अब कालात्यापदिष्ट नाम का जो हेत्वाभास है उसके बारे में बताते हैं कि यस्य हेतो हो प्रत्यक्षादि प्रमाणेन पक्षे साध्याभाव परिच्छिन्न स कालात्यापदिष्ट। जिस हेतु का प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ही जो है पक्ष में साध्याभाव परिच्छिन्न हो माने निश्चित हो, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ही यदि पक्ष में साध्याभाव निश्चित हो गया है तो वहाँ का जो हेतु होगा वो कालात्यापदिष्ट हेतु कहलाएगा। स एव बाधित विषय इति उच्यते। और यही जो कालात्यापदिष्ट नाम का हेत्वाभास है यही बाधित विषय भी कहलाता है। यथा अग्नि अनुष्ण कृतकत्वात् जलवत्। अग्नि जो है वह अनुष्ण होता है माने गर्म नहीं होता है, कृतकत्वात् कृतकत्व रहने के कारण जलवत् जल की तरह। अत्र कृतकत्वम हेतु यहाँ कृतकत्व हेतु है। तस्य च यत् साध्यम अनुष्णत्वम उस कृतकत्व हेतु का साध्य क्या है, यहाँ अनुष्णत्व साध्य है। उस अनुष्णत्व का तस्य अभाव उस अनुष्णत्व का अभाव जो है प्रत्यक्षेणैव परिच्छिन्नः प्रत्यक्ष प्रमाण से ही परिच्छिन्न है माने निश्चित है, उसको छूने से पता चल जाता है कि यहाँ पर अनुष्णत्व का अभाव है अर्थात उष्णत्व है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष के द्वारा ही परिच्छिन्न साध्याभाव परिच्छिन्न होने के कारण यहाँ का जो हेतु होगा वो बाधित विषय हेतु कहलाएगा या कालात्यापदिष्ट हेतु कहलाएगा। त्वगिन्द्रियेन अग्नेः उष्णत्व परिच्छेदा त्वगिन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष के द्वारा जो है उष्णत्व का यहाँ पर परिच्छेद हो जाता है। तथा अपरा अपि कालात्यापदिष्ट और भी टाइप है कालात्यापदिष्ट का, यथा घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये प्रागुक्तम सत्वम हेतु। ताकि जैसे घट में क्षणिकत्व अगर साध्य होगा तो प्रागुक्त जो सत्व है वह वहाँ पर हेतु होगा। तस्यापि वह जो सत्व नाम का हेतु है तस्यापि सत्वस्य हेतु हो यत साध्यम क्षणिकत्वम जो साध्य क्षणिकत्व है तस्य अभाव उस क्षणिकत्व का अभाव जो है क्या अक्षणिकत्व वह अक्षणिकत्व प्रत्यभिज्ञा तर्कादि लक्षणेन प्रत्यक्षेन परिच्छिन्नम वह प्रत्यभिज्ञा तर्क आदि लक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष से ही जो है परिच्छिन्न है निश्चित है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया प्रत्यभिज्ञा शब्द, तो उसके बारे में बताते हैं कि स एवायम घटो यो मया पूर्वम उपलब्धः। यह वही घड़ा है जो पहले मुझे उपलब्ध हुआ था। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है ना उसी को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा, माने पहले अनुभव हुआ हो उस वस्तु का और इस समय में अगर उस तरह की वस्तु माने वही वस्तु अगर दिखाई दे तो उस समय में जो ज्ञान होता है उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। यहाँ पर कहा ना स एव अयम घट वही यह घट वही मतलब क्या पूर्व काल में जिसका अनुभव हुआ था वही यह घट है जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है यो मया पूर्वम उपलब्ध। इस तरह से इति प्रत्यभिज्ञया इस तरह की प्रत्यभिज्ञा से पूर्व अनुभव जनित संस्कार सहकृत पूर्व में जो अनुभव किया गया उस अनुभव से जन्य जो संस्कार है उस संस्कार से सहकृत माने उस संस्कार से युक्त होने के कारण इंद्रिय प्रभाव या इंद्रिय से प्रभाव होने के कारण माने इंद्रिय से उत्पन्न होने के कारण पूर्वापर काल आकलन या पूर्वापर काल पूर्वकाल और अपर काल माने पहले का समय और इस समय का समय इन दोनों की आकलना करने के कारण घटस्य स्थायित्व परिच्छेदात घट में जो है स्थायित्व का परिच्छेद होता है स्थायित्व का निर्णय होता है। अगर स्थायित्व नहीं रहेगा तो पहले जो घटा स एव अयम घट इस तरह की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पाएगी। क्षणिक अगर घट होगा तो पहले का जो घट मिला था वही घट ये है इस तरह की प्रतिभिज्ञा कैसे होगी, इतनी देर तक घट रहेगा तभी तो प्रतिभिज्ञा होगी। तो वही कहा कि प्रतिभिज्ञा के द्वारा स्थायित्व का यहाँ परिच्छेद हो जाता है, इसलिए यह जो यहाँ पर हेतु दिया गया सत्व नाम का हेतु वह हेतु गलत है। येपि लक्षणस्य केवल व्यतिरेक हेतु हो त्रयो दोषाः, ताकि लक्षण के जो तीन दोष होते हैं, ये शुरू में आपने पढ़ा था, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नाम का दोष, वो भी जो है ना हेत्वाभास के अंतर्गत आता है। वही कहा कि ये भी लक्षणस्य केवल व्यतिरेक हेतु हो त्रयो दोषाः, जो लक्षण का केवल व्यतिरेकी हेतु का तीन दोष होता है, क्या क्या, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष, तेपि अत्रैव अंतर्भवन्ति, ये तीनों जो है दोष भी इसी के अंतर्गत जो है माने जाते हैं। न तु ते पंचभ्याधिकाः, ये जो तीनों है अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव नाम का दोष, ये पंचभ्यः हेत्वाभासेभ्यः न अतिरिक्ताः, ये इनसे अतिरिक्त नहीं होते हैं। तथा ही अतिव्याप्ति व्याप्यत्वासिद्धि विपक्ष मात्रात् अव्याप्तत्वात् सोपाधिकत्वाच्च, ताकि उसमें अतिव्याप्ति क्या होती है, तो पहले आप स्मरण कर लीजिए अतिव्याप्ति दोष होता क्या है, तो अलक्ष्य में लक्षण का जो गमन है उसी का नाम है अतिव्याप्ति, माने जो लक्ष्य नहीं है उसमें भी अगर लक्षण चला जाए तो उसको हम अतिव्याप्ति कहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि तथा ही अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति नाम का जो दोष है वह व्याप्यत्वासिद्धि, व्याप्यत्व की असिद्धि हो, और विपक्ष मात्रात् अव्यावृत्तत्वात्, और विपक्ष मात्र से अव्यावृत्त हो, माने विपक्ष मात्र में अवृत्ति, विपक्ष मात्र में मात्र से अव्यावृत्त हो, माने अपृथक्कृत हो, और सोपाधिकत्वाच, और सोपाधिक हो माने उपाधि से युक्त हो। अब उदाहरण में इसको समझाएंगे, यथा गो लक्षणस्य पशुत्वस्य, गो का लक्षण जो है अगर हम पशुत्वम गोत्वम इस तरह से लक्षण करेंगे तो गोत्वे ही शासनादिमत्वम प्रयोजकम न तो पशुत्वम, गोत्व में जो प्रयोजक होता है कारण होता है वह शासनादिमत्व कारण होता है, पशुत्व कारण नहीं होता है। तथा अव्याप्ति ही इस तरह से जो है अगर पशुत्व हेतु देंगे, पशुत्व लक्षण करेंगे तो अव्याप्ति नाम का दोष होगा, भागा सिद्धत्वम अव्याप्ति ही हाँ, तो अतिव्याप्ति बता करके माने क्या, अगर पशुत्वम गोत्वम कहेंगे तो यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि महिष में भी पशुत्व है वहाँ उसमें भी गोत्व चला जाएगा, तो वह अतिव्याप्ति का लक्षण हुआ। अव्याप्ति के बारे में बताते हैं कि तथा अव्याप्ति भागा सिद्धत्वम, एक भाग में एक हिस्से में लक्षण का न जाना जो है वह है अव्याप्ति। लक्ष्य के देशे लक्षण अगमनम, लक्ष्य के एक देश में, लक्ष्य के एक भाग में लक्षण का न जाना जो है वही है अव्याप्ति, उसी को कहा अव्याप्ति ही भागा सिद्धत्वम। यथा गो लक्षणस्य सावलेयत्वस्य, जैसे गो का लक्षण अगर करें कि सावलेयत्वम गोत्वम, सावलेयत्वम मतलब चित्रत्वम, माने चितकबरा कलर का होना जिसमें हो वह गाय है, इस तरह का अगर लक्षण करेंगे तो अव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि चितकबरी गाय में तो ये लक्षण जाएगा, और जो मतलब सफ़ेद गाय है, काली गाय है, उसमें लक्षण नहीं जाएगा, इस तरह से अव्याप्ति दोष हुआ। एवं असंभवोपि स्वरूपासिद्धि, असंभव नाम का जो दोष है लक्षण का वह भी स्वरूपासिद्ध के अंतर्गत आएगा। यथा गो लक्षणस्य एक सफत्वस्य, गाय का लक्षण अगर करेंगे कि एक सफत्वम गोत्वम, तो ये लक्षण असंभव हो जाएगा, क्योंकि गाय के दो सफ होते हैं, सफ माने खुर। तो इस तरह से ये जो तीनों लक्षण के दोष हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीनों जो हैं इन्हीं हेत्वाभासों के अंतर्गत जो है गिने गए, तो उस अव्याप्ति जो है वो भागासिद्ध में आ जाएगा, असंभव जो है वह स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास में आ जाएगा, और अतिव्याप्ति जो है वह व्याप्यत्वासिद्ध में, व्याप्यत्वासिद्ध नाम के हेत्वाभास में उसकी गिनती हो जाएगी। इस तरह से पांच ही हेत्वाभास मानने हैं, इसी में लक्षण के जो भी दोष हैं वो भी उसका भी उसकी भी गणना हो जाएगी। अभिप्राय, अब जो है इस तरह से हेत्वाभास का वर्णन हो गया, अब कुछ शब्दों की जानकारी देते हैं, जैसे छल किसे कहते हैं, फिर जो है ना जाति किसे कहते हैं, इस तरह से जो जितने ये तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक शब्द हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। कहते हैं कि अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थांतरम परिकल्प्य दूषण अभिधानम छलम। ये अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य, किसी अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त जहाँ शब्द होता है वहाँ पर अर्थांतर की परिकल्पना करके और फिर दोष देना, दूषण अभिधान करना, यह छल कहलाता है। जैसे हमने प्रयोग किया कि नव कम्बलोयम देवदत्तः, माने नवीन कम्बल वाला यह देवदत्त है, तो हमने कंबल की नवीनता को बताया, तो कंबल की नवीनता बताने के लिए और नवीन कंबल से युक्त ये देवदत्त है ये बताने के लिए हमने कहा नव कंबलोयम देवदत्तः। तो हमारा अभिप्राय क्या था कि कंबल जो है वह नवीन है, इसमें अभिप्राय था नव शब्द के प्रयोग का। अब इस पर छली जो होगा, जो छल करने वाला होगा, वो क्या करेगा, तो दूसरा अर्थ इसका ले लेगा, नव का अर्थ ले लेगा नौ संख्या, और नौ संख्या अर्थ लेकर के मुझे जो है ना बेइज्जत करेगा, कहेगा कि अरे ये तो दरिद्र है देवदत्त, इसको नौ कंबल कहाँ से आएंगे। तो इस तरह से जो है ना अभी दूसरे अभिप्राय से प्रयुक्त जो शब्द है उस शब्द का दूसरा अर्थ कल्पित करके फिर दोष देना जो है वह छल कहलाता है। ये वही बात आगे बताते हैं, यथा नव कम्बलोयम देवदत्त इति वाक्य, नव कम्बल वाला ये देवदत्त है इस वाक्य में नूतन अभिप्राय न प्रयुक्तस्य नव शब्दस्य, नूतन अभिप्राय नूतन अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त जो यहाँ पर नव शब्द है उसका अर्थांतरम आशंका, अन्य अर्थ की आशंका करके कश्चित दूषयति, कोई दोष देता है कि नौ अस्य नव कम्बला सन्ति, इसके नौ कम्बल नहीं हैं, क्योंकि दरिद्रत्वात्, क्योंकि ये तो दरिद्र है, नहीं अस्य द्वयम अपि संभाव्यते, इसके तो दो कंबल की भी संभावना नहीं है, कुतो नव इति, नौ कंबल कहाँ से आएंगे। इस तरह से स्वच बाधि छल बाधितया ज्ञायते, इस तरह से जो शास्त्रार्थ में बाधि होता है वह छल बाधि कहलाता है, वह छली कहलाता है। इस तरह से छल का निरूपण किया, अब जाति का निरूपण करते हैं। कहते हैं कि असत उत्तरम जाति, उत्तर दो प्रकार का होता है, सत उत्तर और असत उत्तर। तो मिथ्या उत्तर जो है उसका नाम है जाति। असल में ये सब चीजें जो है ना वो आया था ना एक बार की अष्ट निग्रह स्थानानि, ये जो बाद जो होता है वो अष्ट निग्रह का अधिकरण होता है, और निग्रह निग्रह का अर्थ मैंने बताया था बाधक, अनिष्ट कारक, अनिष्ट करने वाला जो होता है उसको निग्रह कहा जाता है। तो यही सब निग्रह सब हैं और इसका शास्त्रार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो असदुत्तरम जाति, असत उत्तर, असमीचीन उत्तर को जाति कहते हैं। साच उत्कर्ष समा अपकर्ष समा आदि भेदे न बहुविधा, यह जो जाति है वह उत्कर्ष समा नाम की जाति, अपकर्ष समा नाम की जाति आदि के भेद से बहुत प्रकार की होती है, लगभग 24 प्रकार की जो है ना ये जाति के भेद बताए गए हैं न्याय दर्शन में। तो ये कहते हैं यहाँ पर विस्तर भिया न यह कृष्णा उच्यते, विस्तार के भय होने से यहाँ पर जो है कृष्णा जाति नहीं बताई जा रही है, माने कृष्णा माने सर्वा सकला, सकला जाति ही उच्यते, सारी जातियाँ यहाँ पर नहीं बताई जाती हैं। तत्र अव्याप्तेन दृष्टांतगत धर्मेण साध्य पक्षे अव्यापक धर्मस्य आपादनम उत्कर्ष समा जाति, कहा कि अव्याप्त दृष्टांतगत धर्म के द्वारा, अव्याप्तेन दृष्टांतगत धर्मेण, अव्याप्त व्याप्त और व्याप्य एक ही शब्द है, तो अव्याप्तेन माने अव्याप्येन, तो अव्याप्य दृष्टांतगत धर्म से साध्य पक्षे, साध्य में पक्ष में अव्यापक धर्म से आपादनम, अव्यापक धर्म का आपादन करना, अव्यापक धर्म को बताना उत्कर्ष समाजाति कथ्यते, उत्कर्ष समाजाति के अंतर्गत आता है। यथा शब्द अनित्य कृतकत्वात् घटवत्, जैसे शब्द जो है वह अनित्य है क्योंकि शब्द में कृतकत्व रहता है, घटवत माने घड़ा की तरह, इति उक्ते ऐसा कहने पर कश्चित एवं आहा, कोई ऐसा कहता है कि यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत् शब्दः अनित्यः स्यात् तर्हि तेनैव हेतुना तद्वत् एव शब्दः सावयवोपि स्यात्। इस पर कोई कहता है कि यदि कृतकत्व हेतु के कारण घटवत् मन घरे की तरह शब्द अनित्य माना जाएगा तो तेनैव हेतुना मान उसी कृतकत्व हेतु से तद्वत एव माने ये नित्य कृतकत्व की तरह ही शब्द को जो है सावयव पिस्यात् सावयव भी मानना होगा। तो इस तरह से ये जो कहा गया इसमें अव्याप्त दृष्टांतगत धर्म के द्वारा साध्य में और पक्ष में अव्यापक धर्म का जो है आपादन किया गया है। अब दूसरा है अपकर्ष समाजाति क्या है, तो अपकर्ष समाजातिस्तु दृष्टांतगतेन धर्मेन अव्याप्तेन अव्यापकस्य धर्माभावस्य आपादनम्। कहा कि दृष्टांतगत धर्म मान दृष्टांत में रहने वाला जो धर्म है अव्याप्त धर्म, उसके द्वारा अव्यापक धर्म का अभाव का जो आपादन होता है मान प्रतिपादन होता है उसको हम अपकर्ष समाजाति कहते हैं। यथा पूर्वस्मिन् प्रयोगे, पहले जो प्रयोग किया गया था ना शब्दः अनित्यः कृतकत्वात् घटवत्, इस प्रयोग में कश्चित एवं आह, कोई अगर ऐसा कहता है कि यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत् शब्दः अनित्यः स्यात्, यदि कृतकत्व हेतु से घटवत् शब्द अनित्य होगा तो तेनैव हेतुना उसी हेतु से घटवत् एव ही शब्दः श्रावणोपि न स्यात्। जैसे घट सुनाई नहीं देता उस तरह से शब्द भी जो है सुनाई नहीं देगा, नहीं घटा श्रावण रहती माने घट का जो है श्रावण प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इस तरह से जो कहना है वो असदुत्तर होता है और उसको हम जाति कहते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर हम स्थगित करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।